इंडिया रेडियो झूठिस्तान है। अब हम 11 मीटर 70 बैंड से खड़े होकर बोल रहे हैं। आज की ताजा खबर है, परसों की ताजा खबर है, बरेली के कब्रिस्तान से 7 मुर्दे मय कफन के फरार हो गए। मुर्दे इलाहाबाद बरक्षान ने बीड़ी बनाते हुए गिरफ्तार किए। कल की ताजा खबर है, अलीगढ़ की स्टेशन से 2 रेल के इंजन चोरी हो गए। पुलिस ने इंक्वायरी की तो वो दोनों इंजन एक चाय वाले की केतली में बरामद हुए। परसों की खबर है, अमरीका में गर्मी ज्यादा पड़ने की वजह से लोगों ने अपने तहमद में बिजली के पंखे फिट करवा रखे। ऑल इंडिया झूठिस्तान से उर्दू में खबरें खत्म हुई। अब लीजिए सब्जी मंडी का हाल सुन लीजिए। सब्जी मंडी में सब्जियों में बड़ा जबरदस्त झगड़ा हो गया। अमरूद प्रसाद और शरीफ खां में झगड़ा हुआ। कटहल खां किट 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 करते हुए चले आए। झगड़ा और बढ़ गया। निबुआ चौकीदार ने पुलिस में इतला कर दी। हवलदार कुंदरू सिंह लाल पगिया बांधे मैं पुलिस चचड़ों को लिए मौके पर आन पहुंचे। वो मुकदमा सैयद राजा अनार खां की अदालत में पेश हुआ। फूट 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 के रोने लगी। ककड़ी लंबी लंबी लेट गई। तुरई रोती पीटती अपनी बहन भिंडी के पास पहुंची। मिस्टर करेले खां की कड़वी बोली समझ में न आई। शरीफ खां खिलखिला के हंस पड़े। सैयद राजा अनार खां ने शरीफ खां को तो रिहा किया और अमरूद प्रसाद को लारी की पिटारी में बंद करके सीधा जेल मंडी रवाना कर दिया। ये कब का किस्सा है भाइयों? ये किस्सा है तारीख लाल मिर्च सन 39 बंगाली बंडा ईसवी घुइया। आलुओं का लगाता ढेर। चुकंदर बिक रहा था टके शेर। मूली बिचारी उचकती रही। शकरकंद मारे दहशत के चुपकी रही। सिंगाड़े को पानी में गोता दिया। बगलगीर बैंगन से भुट्टा हुआ। लीजिए आज का समाचार समाप्त।
सुनो मियाँ जुगनू साहब।
फरमाइए।
कल मैंने आपको 100 रुपए दिए थे, आपने उसका हिसाब नहीं दिया।
आप भी कमाल कर रही हैं। कल आपने रुपए दिए थे और आज आप हिसाब मांग रही हैं। कितने दिए थे?
100।
10 के आए गेहूं और 10 के आए जौ। कितने बचे?
बचे 80।
10 की आई लोटा बाल्टी, 10 की आई लस्सी। कितने बचे?
बचे 60।
10 के आए बोरी बोरा, 10 के आए टाट। बचे कितने?
बचे 40।
10 के लाए जूता और 10 के लाए पॉलिश। बचे कितने?
बचे 20।
5 दे आए किताबों में और 5 भरे आए फीस। कितने बचे?
बचे 10।
10 बचे।
अब आप मुझे एक एक करके यानी एक एक टके का हिसाब दीजिए।
कल आपको 10 हो गए थे तो मेहतरानी को 1 रुपया दिया था या नहीं? छूटे तेरे 10 टका बेहतर को दिया, 1 टका बेहतर को दिया, 1 टका बेहतर को दिया। कितने बचे?
बचे 9।
और मुझे तुम्हारे जो टका भुजवाई दिया, 1 टका भुजवाई दिया, 1 टका भुजवाई दिया। कितने बचे?
बचे 8
और टूटी तुम्हारी खाट टका बाड़ी कोनी या 1 टका बाड़ी कोनी या 1 टका बाड़ी कोनी या कितने बचे
बचे 7
आई तुम्हारी 7 टका डोली कानी या 1 टका डोली कानी या 1 टका डोली कानी या 1 कितने बचे
बचे 6
पंडित ने बोली जय टका बुलवाई दिया 1 टका बुलवाई दिया 1 टका बुलवाई दिया 1 बचे कितने
बचे 5
और देखा तुम्हारा नाच टका दिखलाई दिया 1 टका दिखलाई दिया 1 टका दिखलाई दिया 1 कितने बचे
बचे 4
आए तुम्हारे यार टका पानो पा दिया 1 टका पानो पा दिया 1
बचे 3
घोड़े की फट गई जीन टका सिलवाई दिया 1 टका सिलवाई दिया 1 टका सिलवाई दिया 1 बचे कितने
बचे 2
तू भी गई हो टका ढूंढवाई दिया 1 टका ढूंढवाई दिया 1 बचे कितने
मैं तो भूल गई
बड़ा जल्दी भूल गई भाई साहब कितने बचे तंबू में ठोक दई 1 टका ढूंढवाई दिया 1 टका ढूंढवाई दिया 1 टका ढूंढवाई दिया 1
पूरे 100 के नोट का हिसाब बराबर हो गया
अच्छा जी
अरे क्या बात है भगवान आप रो क्यों रही हैं क्या बात है क्या परेशानी है
क्या बताऊं आपको आज मेरी नानी मर गई
नानी मर गई इसमें हमारे नाना पे मर गई
जी नहीं वो तो ऊपर का टिकट कटा गया
अच्छा भगवान के घर चली गई
जी हाँ
आपकी नानी मर गई हमारे नाना लुढ़क गए
तुम्हारे नाना किस पे लुढ़क गए
आपकी नानी पर
क्या बात है
जी मैं गलत नहीं कह रहा ये बताइए आपकी नानी कब मरी
जी मेरी नानी तो आज ही मरी है
और मेरे नाना भी आज ही मरे क्या दोनों को एक ही दिन और एक ही तारीख में मरना था ऐसा लगता है कि तुम्हारी नानी की मेरे नाना की कोई पल्ले जन्म की ताक झांक चली आ रही होगी इसीलिए एक साथ मरे मगर एक बात बताइए आपकी नानी मरी तो आपको कोई निशानी दे गई
जी हाँ मेरी नानी जब मरने लगी
जी
तो मुझसे कहने लगी कि बेटा मैं तो मर रही हूँ
अच्छा?
तो मैंने कहा नानी मर जाओ
अच्छा
तो कहने लगी कि बेटा मरते मरते मैं तुझे एक चीज देना चाहती हूँ
क्या चीज
मैंने कहा नानी वो क्या है तो एक इतना लंबा इतना चौड़ा इतना लंबा इतना चौड़ा
इतना लंबा आखिर कुछ नाम है उसका कि इतना लंबा इतना चौड़ा
जी मुझे एक दालान दे गई
दालान अच्छा बड़ा फैलाव है आपकी नानी के दालान का इतना लंबा चौड़ा था
इतना लंबा चौड़ा था कि उसका एक सिरा चीन में दूसरा जापान में
वाह दरवाजा क्या कब्रिस्तान में था
जी नहीं
ये चीन और हिंदुस्तान में लड़ाई जो हुई थी आपकी नानी के दलान में ही हो रही थी ये जो तोड़ते गोले छूट रहे थे ये आपकी नानी के दलान में ही छूट रहे थे
और आपकी नाना जान मरी तो आपको क्या दे गए
जी मत पूछिए मेरे नाना तो बेचारे गरीब थे ऐसा मरने की पोजीशन थी मेरे नाना की मिस्टर मलेरिया ने फुल पावर से उनको दबा लिया
अच्छा
और जब कोनियों तक दम खिंचे आई तो मुझे इशारे से बुलाया
क्या कहा
बोले बेटे फुद्दे खां इधर आओ
फुद्दे खां आपका नाम फुद्दे खां है
जी गरीब को फुद्दे खां कहते हैं क्योंकि मैं मिनट मिनट पे फुदक जाता हूँ
फिर क्या हुआ
फिर क्या हुआ मेरे हाथ में एक बम्बू काट थमा दिया
ये बम्बू काट क्या है
इंग्लिश में कहते हैं बम्बू काट हिंदी में कहते हैं पर्वती बांस
फिर क्या हुआ
वो बांस इतना लंबा था कि जमीन से लेकर आसमान में घुस जाया करता था। और उसे काम क्या लिया करते थे, जब कभी बारिश नहीं होती थी तो किसान लोग मेरे पास आते थे और कहते थे, मियां फुद्दे खां पानी बरसाओ, जनता परेशान है। तो दो चार साल में बांस से काम लिया करते थे जब बारिश नहीं हुआ करती थी। ना तो वो नाली के पास रखा रहता था, यानी बोरी के पास, जहाँ से 2400 घंटे पानी का निकास जनाब तरी की वजह से उस बांस के चारों तरफ घास खड़ी हो गई। बांस को घास ने घेर लिया। हमने क्या काम किया, घास को हटाया, बांस को उठाया, आसमान में लगाया और भीतर हिल हिलाया और भल भल करके पानी आया।
एक बात बताइए
जी,
कि वो इतना लंबा इतना चौड़ा, इतना लंबा इतना चौड़ा वो बांस रखा कहाँ जाता था?
लीजिए, आपको ये ही नहीं मालूम है कि वो कहाँ रखा जाता था? अरे देवी जी, वो रखा जाता था तुम्हारी नानी के दालान में।
अरे भाई फुद्दे खां।
फरमाइए दोस्त।
आजकल आप बहुत बिजी हैं।
क्या बताऊं दोस्त, दिनों रात पढ़ाई करनी पड़ती है क्योंकि मेरे इम्तहान चल रहे हैं।
अच्छा
जी, मैं आज की बात बताता हूँ आपको।
क्या बात है?
मास्टर साहब ने कहा कि बेटा जुगनू, जब इम्तहान का लास्ट दिन रह जाए तो तुम कॉलेज में मत आना, घर रहना, हम तुम्हें घर बैठे ही पास करा देंगे।
अच्छा
जी हाँ, मगर मना करने पर भी मैं नहीं माना, चुपके से बच्चों के पीछे आके बैठ गया। अब मास्टर साहब का सवाल बच्चों से क्या होता है,
क्या होता है?
मास्टर साहब कहते हैं, बच्चों बताओ एक चीज के अनेक नाम बताओ, जैसे भगवान, ईश्वर, खुदा, परमात्मा। सब बच्चे चुप रह गए। अब मैंने हाथ उठा दिया, मास्टर साहब अगर इजाजत हो तो मैं बताऊं। मास्टर साहब ने देखा कि आ गया जुगनू। मास्टर साहब चक्कर में पड़ गए कि ऑफिसरानों के सामने अब ये जरूर बदतमीजी करेगा, मगर ऑफिसरानों की डर की वजह से मास्टर साहब को कहना ही पड़ा। अच्छा बेटा जुगनू बताओ, तो हम बता रहे हैं, देखिए चीज एक और नाम अनेक, इसको बोलते हैं बाल। हिंदी में बाल, उर्दू में गेसू, इंग्लिश में हेयर, मराठी में चूल, बंगाली में पोपनी। यही बाल थोड़ा सा नीचे आया तो क्या बन गया, भौंका बाल। यही बाल थोड़ा सा नीचे आया तो क्या बन गया, पलक का बाल। यही बाल थोड़ा सा नीचे आया तो क्या बन गया, नाक का बाल। यही बाल थोड़ा सा नीचे आया तो क्या बन गया, मूंछ का बाल। यही बाल थोड़ा सा नीचे आया तो क्या बन गया, दाढ़ी का बाल। यही बाल थोड़ा सा नीचे आया तो क्या बन गया, बगल का बाल। यही बाल थोड़ा सा इधर आया तो क्या बन गया, सीने का बाल। यही बाल थोड़ा सा नीचे आया तो क्या बन गया, पेट का बाल। जैसे ही पेट का बाल कहा, मास्टर साहब बोले, बस बेटा स्टेशन आ गया, खतरा है, अब मत बोलो। लीजिए सज्जनों, तो मैं आपके सामने एक दिलचस्प वाकया सुनाता हूँ। एक श्रीमती जी परमिट की लेन में लग रही थी चीनी और मिट्टी का तेल लेने के लिए। तो वो बहुत तगड़ी तंदुरुस्त थी, उनके आगे एक पतला दुबला आदमी बेचारा लगा हुआ था। तो जब भी पीछे से लेन का झोंका आए तभी वो आदमी उनसे कहे, देखिए बहन जी जरा धक्का मत मारिए। जब भी पीछे से धक्का आए तो वो आदमी कहता है, बहन जी देखिए धक्का मत मारिए। जब बहन जी पे नहीं रहा गया तो वो खिसिया कर कहती है,
आहा के सांस लेना भी गुनाह है, धक्का मत मारिए तो माफ कर दिया आपने।
इतने में वो श्रीमती जी जब आगे बढ़ती हैं तो रक्षे वालों ने उनकी तरफ बड़े गौर से देखा और रक्षे वाला भाग कर आगे बढ़कर रक्षा रोक कर कहता है, अगर आप बैठो मैडम तो खड़ा करूं। तो मैडम जवाब देती हैं, मोड़ कर पीछे कर ले। इतने में ही जब वो आगे बढ़ी तो एक सिनेमा हॉल पर गेट कीपर से उन्होंने पूछा, ए सुनो तुम्हारे हॉल में कौन सी फिल्म चल रही है? तो गेटकीपर आज के बड़े मनचले होते हैं। गेटकीपर कहता है, आओ मेरी जान। तो श्रीमती जी बड़ा खिसियाई और उससे बोली, बदतमीज। तो गेटकीपर ने जवाब दिया, मैडम बदतमीज तो अगले हफ्ते में लगेगी, अब तो आओ मेरी जान चल रही है। तो उनके पूरे सूट पर हवाई जहाज छुपे हुए थे। वो गेटकीपर बड़े गौर से देखने लगा तो वो श्रीमती जी कहती है, बेवकूफ क्या देख रहा है, बड़े गौर से देख रहा है, क्या तेने हवाई जहाज नहीं देखे कभी? तो वो गेटकीपर जवाब देता है, हवाई जहाज तो बहुत देखे मैडम, मगर ऐसा हवाई अड्डा आज तक नहीं देखा। तो लीजिए मैं आपको प्राइमरी स्कूल का किस्सा सुनाता हूँ। इम्तिहानों के दिन चल रहे थे और अचानक डिप्टी साहब इंक्वायरी करने के लिए आ गए। तो डिप्टी साहब पूछ रहे हैं मास्टर साहब से, मास्टर साहब आपने इन बच्चों को कुछ पढ़ाया है? तो मास्टर साहब जवाब देते हैं, सरकार मैंने मेहनत करके पढ़ाया है, आप जो सवाल पूछेंगे बच्चे जवाब देंगे। तो डिप्टी साहब बच्चों से पूछ रहे हैं, बच्चों बताओ भगवान शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? बच्चे आपस में कहने लगे, मैंने ना साहब जाने तोड़ो है, है मेरा नाम झूठा लगा रहे सारे, तेने ही तो तोड़ो है। तो डिप्टी साहब कहने लगे, वाह जिस देश के बच्चों को ये पता नहीं है कि भगवान शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, वो देश क्या उन्नति कर सकता है। मास्टर साहब अब आप बताइए भगवान शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? तो मास्टर साहब कह रहे हैं, सरकार इसमें नाराज होने की क्या बात है, इन्हीं में से कोई तोड़ आया होगा और कौन तोड़ गया। उधर से प्रिंसिपल साहब आ रहे थे तो डिप्टी साहब कहते हैं, सुना आपने मास्टर साहब क्या फरमा रहे हैं? मैंने पूछा भगवान शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, तो कह रहे इन्हीं में से कोई तोड़ आया होगा, अब आप बताइए भगवान शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। तो प्रिंसिपल साहब क्या कह रहे हैं, सरकार इसमें नाराज होने की क्या बात है, बच्चे आपके भी हैं, बच्चे हमारे भी हैं, जितने का आपका धनुष है उतने पैसे हमसे ले लो। डिप्टी साहब बहुत गर्म हुए, नाराज हुए और कहने लगे, सुबह ही पूरे स्कूल को बर्खास्त कर दूंगा, अगले इम्तिहान में यही सवाल रखा जाएगा, बच्चों जरा ख्याल रखना, भगवान शिव जी का धनुष भगवान राम ने तोड़ा था।
मैं आपको एक गढ़रिया की कहानी सुना रहा हूं। गंगा दीन गढ़रिया बाने पाल रखी 10 भेड़ और 12 बकरिया, भगवान के आगे तुम्हारी चले ना हमारी, फैल गई पशुओं में बीमारी, 10 भेड़ भगवान को है गई प्यारी। दौड़ो दौड़ो पहुंचो गढ़रिया पंडित जी के पास, पंडित जी मेरी तो है गई रेड़,
10 मर गईं, बकरियां और 12 मर गईं, भेड़। तत्काल बोले गुरु के रामायण को पाठ कर दे शुरू। जैसे ही वाने करो रामायण को पाठ, बकरियां मर गईं और 8। एक भेड़ को मेमना बचो, सो मैं खानो खा रहो, सो मेरे संग लगो और सारो भें भें करने लगा। मैंने कहा सारे एक चौपाई को ना आए, एक ही चौपाई में मर जाएगो। तो देवी जी तू धूर में है रही भूतरिया, ने के जल्दी धोया थूतरिया, बम्बा पे बोले गई थी तुरिया, तू बने न रायबे कब जाएगी। जब खेत की है गई पोखरिया, ले बेजर छल्ले ओखरिया, जब भूकन मर गई डोकरिया, तू मटर भुंजाएबे कब जाएगी। तेरे घर में घुसगो गिद्धरिया, और द्वार पिठाड़ो ईसुरिया, मैं मूल से मारूंगी हड़िया, तू यूं समझते के दब जाएगी। मोने को जाए रही चंदनिया, जैसे मिलवे आए गई झम्मनिया, यो के मन लागी चेतनिया, तू लौट के बहना कब आएगी। जगो भैया आएगो गिद्धरिया, ना लहंगा लायो ना फरिया, और द्वार पे भूसी कूतरिया, तू रपट लिखाए कब जाएगी। गोरी चलो ना हंस की चाल, गोरी चलो ना हंस की चाल, सामने नाली है, तेरी उम्र है 16 साल, बाबा की कुठरिया खाली है। तेरा लहंगा कहे मेरी पेंट से, और हम तुम बने एक धागे से, फर्क इतना है भागे से, तुम खुलती हो पाछे से, और हम खुलते हैं आगे से। तेरे दरवाजे की कुंडी जो खटखटाई है, तेरे दरवाजे की कुंडी जो खटखटाई है, लेके भुकनी वो तेरी अम्मा निकल आई है। उधर तेरा छकड़ा, इधर मेरा ट्रैक्टर।
ट्रैक्टर क्या है मुंशी जी?
लो साहब इतनी बड़ी हो गई ये ट्रैक्टर नहीं जानती। अरे भगवान, तुम्हारे जमीन है थोड़ी बहुत?
जी हाँ।
कितनी है?
5 बीघे।
तो 10 मिनट को इजाजत दो। वो तासीर है मेरे ट्रैक्टर की जुताई में, कि एक एक छमाई में 3-3 फसलें तैयार करता है। मेरा ट्रैक्टर ऐसा जोतता है, ना ऊंचा देखे ना नीचा देखे, आई झाई झंगर बंगर सब जोतता हुआ चला जाता है। और कहीं मेरे ट्रैक्टर का तुमने मैदानी बोरिंग देख लिया तो ये कहोगी
अल्लाह मियां ये पानी कहां से लिकस रहा है।
किसी दिन चांस दो, 5 बीघे जमीन है, तुम्हारी जमीन के कोने तोड़ तोड़ के रेशे बराबर कर देगा। क्योंकि उधर तेरी टमटम, इधर मेरा ट्रैक्टर, बराबर की टक्कर लड़ी जा रही है। खुदा के लिए अपनी अम्मा को रोको, मेरे बाप को परसों से फुसला आ रही है। अरे भाई सुनिए, खुदा करे इन हसीनों के माँ बाप मर जाएं, बहाना मौत का हो हम इनके घर जाएं। भाई खुदा करे मेरा चूहा तेरी रोटी खुतर जाए, खुदा करे मेरा चूहा तेरी रोटी खुतर जाए, बजाए आम के तेरा अचार पड़ जाए। मोहब्बत हमसे की तुमने, मगर एक शर्त लगा रखी है। अरे कौन सी चीज है जो कपड़ों में छुपा रखी है? सुना रेशम की चोली में छुपे दो लाल रखती हो, सुना रेशम की चोली में छुपे दो लाल रखती हो, तुम्हें पैसे से क्या मतलब जब नीचे टकसाल रखती हो। अरे गोरी तुम हो, अरे गोरी गोरी, अरे गोरी तुम हो मिसेस पार्वती जी, हम हैं मिस्टर भोला, और आओ बीबी आगे बढ़ के पी लो कोको कोला। भाई ये बुढ़ी रंडी क्या करे, भेड़ें चरावें बाग मा, और फूटा रवाना हाथ मा, गावे मल्हारे राग मा, जब गई चने के खेत में ले नोन मिर्चा हाथ मा, कुछ नोचे कुछ खाए कहे बड़ा मजा है साग मा। इतने में आया खेत वाला लेके डंडा पिल पड़ा, अब बचो। इतने में आया खेत वाला लेके डंडा पिल पड़ा, फिर ये उससे हुई के बोली ना, कहा क्या बोली, जब आती होगी याद मेरी, तेरा सब कुछ उछलता होगा। जब आती होगी डावर की दवाएं लेती जा, डावर की दवाएं तू लेती जा, जा तुझको पति बीमार मिले, मायके की कभी ना याद आए, ससुरालों में इतनी मार मिले।
एक साहब अपनी ससुराल गए अपनी वाइफ को लेने के लिए, तो उनके 3 साले थे और तीनों सालों की आदत अलग अलग थी। बड़े साले जो थे वो जरा सीधे टाइप के थे और बीच के साले जो थे उनमें जरा चौनी भर लहर थी, मेरे मतलब को आप समझ ही रहे होंगे, और छोटे साले जो थे वो जरा खतरनाक मिजाज के थे। अब देखिए तीनों सालों का जीजा जी से बात करने का स्टाइल तरीका। पहले वो आए जो सबसे बड़े हैं और सीधे हैं, वो किस तरह से जीजा जी से बात करते हैं। जीजा जी क्या मैं अंदर आ जाऊं? अरे मैं तो अंदर आ ही गया। जीजा जी मेरी बहन को आप ले तो जा रहे हो, हमने इसे बड़े नाज और प्यार से पाला है, हमने इसे माँ का ही दूध नहीं बल्कि भैंस का दूध पिला के पाला है, अगर इसे कोई तकलीफ हो गई तो हम आत्महत्या कर लेंगे। जीजाजी बोले कोई तकलीफ नहीं होगी। जीजाजी बोले कोई तकलीफ नहीं होगी। अब वो आए जिनमें चौनी वर लहर थी।
आय हाय जीजा भड़ुए अंदर घुसा बैठा है, भड़ुए मेरी बहनिया को ले तो जा रहा है, अगर इसे कोई तकलीफ हो गई तो ताली बजा बजा के तेरा घर भर दूंगी। हाँ
अब वो आए जो खतरनाक मिजाज के हैं, तो उनका बात करने का तरीका देखिए किस तरह से बात करते हैं। अरे ओ जीजा आओ महारथी आओ, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। जीजा तू बाहर आता है या मैं अंदर आऊं? जीजा मेरी बहन को ले तो जा रहा है, अगर इसे कोई तकलीफ हो गई तो ऐसी जगह मारूंगा जहां पानी देने वाला पैदा नहीं होगा। जीजा डर गए और बोले कैसी बात करते हो साले साहब, जैसे आपकी बहन वैसे मेरी बहन।
अरे भाई फुद्दे खा।
क्या कहा दोस्त?
कहा थे यार तुम तो जरा दिल से मिले भी नहीं।
क्या बताएं दोस्त, लखनऊ जरूरी काम से गया था और लखनऊ में मुझे एक अजीब चांस नजर आया। एक वाकया सामने नजर पड़ा, लखनऊ में एक अचार वाला आम का अचार बेच रहा था, तो उसकी मटकी में 1.5 छटाक का चूहा गिर गया। उसने सोचा 50-60 रुपए का नुकसान हो गया, भाई इसके पैसे तो सीधे करने ही है। वो चूहा निकाल कर फेंक दिया और उसी अचार को बेचने के लिए चल दिया, तो कलकत्ते की गलियों में चिल्ला रहा है अचार वाली अचार वाली। इतने में ही एक 8-10 साल की लड़की निकल कर आई, बोली भैया अचार वाले चाराने का अचार देना। उस लड़की को पत्ते पर अचार रख दिया। लड़की ने जैसे ही अचार खाया, अचार का खाना हुआ, भैया अचार वाले तुमने मेरा पेट खराब कर दिया, मर गई अम्मी डैडी। लड़की के पिताजी भाग कर आए, बोले क्यों बे मेरी लड़की को क्या खिला दिया? तो अचार वाला कहता है सरकार रोज अचार बेचता हूँ, आज तक शिकायत नहीं मिली। तो लड़की के पिताजी कहते हैं अच्छा थोड़ा सा अचार हमें भी दिखाओ, देखें क्या मिला हुआ है तुम्हारे अचार में। लड़की के पिताजी ने अचार खाया, अचार का खाना हुआ, ओहो बेटा मेरे साथ में भी दाव खेल गया, छोड़ूंगा नहीं, चलो थाने। सामने से कांस्टेबल साहब देख रहे थे, भाग कर आए, बोले क्यों बे 2 मरीज कर दिए, तुमने इनको क्या खिला दिया? सरकार रोज अचार इसी मोहल्ले में बेचता हूँ, आज तक शिकायत नहीं मिली। कांस्टेबल साहब क्या कहते हैं अच्छा थोड़ा सा अचार हमें भी दिखाओ, देखें क्या मिला हुआ है तुम्हारे अचार में। कांस्टेबल साहब ने भी वही अचार खा लिया, अचार का खाना हुआ, ओहो बेटा चलो थान मेरे साथ में भी दाव खेल गया, छोड़ूंगा नहीं, चलो थाने, थाने चलो। थानेदार साहब के सामने मुकदमा पहुंच गया तो थानेदार साहब बोले कांस्टेबल साहब से कि भाई ड्यूटी को छोड़कर कैसे आए। तो कांस्टेबल साहब बता रहे हैं सरकार इसने ना जाने क्या खिला दिया, हमारा पेट खराब हो गया, मर गया। थानेदार साहब कहते हैं अच्छा भला ड्यूटी पर भेजा था, क्या करके पिट 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 करना शुरू कर दिया। ए अचार वाले थोड़ा सा अचार हमें भी दिखाओ। थानेदार साहब ने भी वही अचार खा लिया। अचार का खाना हुआ, थानेदार साहब भी स्टार्ट हो गए मुकदमा अदालत, मुकदमा अदालत। अदालत में जज साहब के सामने मुकदमा पहुंच गया तो जज साहब क्या कह रहे हैं,
ऑर्डर ऑर्डर कीप साइलेंस इन दिस केस कैरी ऑन, यानी मुकदमे की तफसील बयान की जाए।
सरकार इसने ना जाने क्या खिला दिया, हमारा पेट खराब हो गया, मर गया। जज साहब क्या कह रहे हैं,
थोड़ा सा अचार माँ बदौलत को भी पेश किया जाए।
जज साहब के सामने अचार पेश किया, जज साहब ने अचार खाया, अचार का खाना हुआ
मुकदमा कैंसिल, मुकदमा कैंसिल 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 कैंसिल।
बादब बा मुलाहजा होशियार, हुद्दे शाह आपके सामने आ रहे हैं और देखिए आपको क्या सुनाते हैं और आप क्या सुनते हैं, ये आपके सामने मुखातिब है।
सब भाइयों को राम राम। मैं फिल्मी सितारे जो हैं पृथ्वीराज कपूर, उनकी आवाज में फिल्म अनारकली के डायलॉग आपके सामने पेश कर रहा हूँ।
बनाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम बल जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, तुम पर इल्जाम लगाया जाता है कि तुमने मुगलिया सल्तनत की फौजों को बरगलाया और महल में फौज कशी की। तुम्हारी तमाम नाफरमानियां हमारी मेहरबानी की मुश्तहक हो सकती हैं, बशर्ते अनारकली को छोड़ दो। यही डायलॉग अगर एक आदमी रोकर कहे तो कैसे लगेंगे, जरा गौर फरमाना।
बनाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम बल जलालुद्दीन अरी मैया।
और यही डायलॉग अगर एक हिजड़ा कहे तो कैसे लगेंगे, गौर फरमाना।
आय हाय भाभी कहाँ जा रही है, छक्के छुड़ा दूंगी। हाँ आज मेरा तेरा मुकालबा है, ना तेरे पास हथियार ना मेरे पास हथियार, तुझ पे पड़े खुदा की मार। आय हाय बनाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम बल जलालुद्दीन, तुम पर इल्जाम लगाया जाता है कि तुमने मुगलिया सल्तनत की फौजों को बरगलाया और महल में फौज कशी की। तुम्हारी तमाम नाफरमानियां हमारी मेहरबानी की मुश्तहक हो सकती, बशर्ते अनारकली से वो हमारे हवाले कर दो, या अनारकली को तुम ले लो, सलीम को मेरे हवाले कर दो, मैं उससे खूब बजवाऊंगी। आए मेरे मोहल्ले में पतियों की भरमार है, मेरे मोहल्ले में पतियों की भरमार है, जिसका पति कंजर। हाँ तो लो भाई श्रोता गणों, मैं तीन स्त्रियों की कहानी आपको सुना रहा हूँ। एक ही दिन एक ही तारीख में तीन स्त्रियों की मृत्यु हो गई, जिसमें एक स्त्री थी कलयुग के जमाने की और दो स्त्री थी सतयुग के जमाने की। तो धर्मराज जी का दरबार लग रहा था और उनको धर्मराज जी के दरबार में बुलवाया गया। तो धर्मराज जी पूछ रहे हैं सतयुग के जमाने की स्त्री से, हे स्त्री तुमने पृथ्वी पे जाकर क्या क्या किया। तो धर्मराज जी से जवाब दे रही हैं,
महाराज मैंने अपने सास ससुर की सेवा की और अपने पति के अलावा गैर पुरुष का मुंह नहीं देखा।
धर्मराज जी कह रहे हैं, महामंत्री इसको चांदी के कमरे में पहुंचाया जाए, इसको चांदी के कमरे की चाबी पकड़ा दी जाए। अब वो आई जो दूसरी थी सतयुग के जमाने की, तो उनसे धर्मराज जी पूछ रहे हैं, हे स्त्री, तुमने पृथ्वी पे जाकर क्या क्या किया? तो वो कह रही हैं,
महाराज, मैंने अपने पति के अलावा कभी गैर पुरुष का मुंह नहीं देखा और सास ससुर की सेवा की।
धर्मराज जी क्या कह रहे हैं, महामंत्री, इसको सोने के कमरे की चाबी पकड़ा दी जाए। अब वो आई जो कलयुग के जमाने की हैं, उनकी क्या फैशन है आने की, 1.5 किलो लिपस्टिक खाए हुए हैं, 5 किलो काजल रोते हुए हैं, 2-2 चुटीले लग रहे हैं, हाथ में बैग लग रहा है, बड़ी शान से ऊंची एड़ी का सैंडल पहन कर धर्मराज के दरबार में आई। तो धर्मराज जी उनसे पूछ रहे हैं, ए स्त्री, तुमने पृथ्वी पे जाकर क्या क्या किया? तो वो जवाब दे रही है,
क्या कहा धर्मराज डार्लिंग जी?
धर्मराज जी बड़ा चक्कर में पड़े कि ये डार्लिंग कहती है, हे स्त्री, तुमने पृथ्वी पे जाकर क्या क्या किया?
महाराज, मैंने अपने पति को छोड़कर सुबह से शाम तक 100-100 पतियों का तो नाश्ता कर लिया और अपने पति के संग घर के दरवाजे तक नहीं गई और यारों के संग बम्बई तक चली गई।
धर्मराज जी कह रहे हैं, महामंत्री, इसको हमारे कमरे की चाबी पकड़ा दी जाए।
निये?
जी, आपने मुझसे कहा?
जी हाँ, मैंने आप ही से कहा।
फरमाइए, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
क्या आप पढ़े लिखे हैं?
आप हैरत में रह जाओगी अगर समझ लोगी कि मैं कितना पढ़ा हुआ हूँ।
कितना पढ़े हुए हैं आप?
जिस तरह से भगवान रामचंद्र जी ने अपने पिता के आदेश के मुताबिक 14 वर्ष वनवास में गुजारे थे, इसी तरह से 13 साल हो गयी चौथे क्लास में।
13 साल हो गयी आपको चौथे क्लास में?
जी, यही तो ताज्जुब की बात है कि 5वें में नहीं पहुंच पाता हूं, जब तक फेल हो जाता हूं।
वो क्यों?
इसलिए हमारे कॉलेज में मास्टर कुछ भस्ती किस्म के आ गए हैं, लड़कियां छमाई की छमाई पास हो रही हैं और लड़के साल के साल फेल हो रहे हैं, जबकि लड़कियों पे 6-6 महीने चढ़ जाते हैं, देने का नाम ही नहीं लेती।
क्या?
और लड़के महीने के महीने जमा करते हैं।
क्या
फीस और क्या?
तो लीजिए, ये आप मेरा खत पढ़ दीजिए।
अच्छा अच्छा, ये किसका खत है साहब?
जी मेरे उनका है।
उनका किसका?
अजी, जिनका नाम नहीं लिया जाता।
अच्छा, समझ गए, आपके पिताजी का पत्र है।
जी नहीं, जी मेरे पति देव का है।
पति देव? क्या मतलब, क्या देते हैं आपको?
अजी, खाना देते हैं, कपड़ा देते हैं, खर्चा देते हैं,
टाइम टाइम पे मनोरंजन भी प्राप्त कराते होंगे। ये कहाँ पर नौकर हैं साहब?
जी मिलिट्री में है।
आहा, मिलिट्री में है? तब तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में जब लड़ाई हुई थी तो आपके पति देव ने बड़े तोपों में गोले फिट किए होंगे, तमाम तोपों के मुंह बेकार कर दिए होंगे, कितनी तगड़ी गोला बारूद हो रही थी। अच्छा तो देवी जी, नाराज मत होना, चश्मा घर भूल आया हूँ, मेरी आंखों को मोतिया बिंद मार गया है, सामने का आदमी मुझे अंधा नजर आता है, जरा देर लगेगी पढ़ने में।
आप जरा जल्दी से सुना दीजिए।
अच्छा,
ये क्या, आपने तो देर लगा दी।
जरा समझ लेने दीजिए, ऐसा लगता है आपके पति देव कुछ कम पढ़े लिखे हैं।
जी नहीं, वो तो बहुत पढ़े लिखे हैं। क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं?
देवी जी, इसमें बड़ी खतरनाक खबर है।
वो क्या?
इसमें लिख रहा है, मेरी प्राण प्रिय, मेरा मोटर से एक्सीडेंट हो गया।
क्या एक्सीडेंट? आप क्यों रो रहे हैं?
आप क्यों रो रही हैं?
मेरे तो पति देव का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए रो रही हूँ।
और देवी जी, आप नाराज मत होना, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, किसी और से पढ़वा ली।
तो बेवकूफ आदमी, तुमने मुझे इतनी देर क्यों पागल बनाया?
पागल कहाँ बनाया, रोना तो इसी बात का है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ।